आज का दिन जो है वो बहुत ही पुरमसरत दिन है, बहुत ही खुशियों भरा दिन है, क्योंकि आज हमारे और आपके नवे इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत की तारीख है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो इस्लामी स्कॉलर जनाब नवेद हैदर तकवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए।
मैं भी आपकी खिदमत में और दुनिया भर में जहाँ पर भी सहर टीवी की नशरियात देखी जा रही है अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। आसमान इमामत व विलायत के नमे दरख्शां सितारे हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बा सआदत की मुनासबत से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नवेद साहब। अब बहरहाल आपकी नज़र में यह है कि अब मौजू क्या है हमारा, तो सबसे पहले ये कि जिन यानी ये प्रोग्राम जो है ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे बड़े प्रोग्राम देखते हैं, बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ ख़ासकर हमारे नवे इमाम की एक ज़िंदगी पे खुलासतन जो है एक रोशनी डालें आप ज़रा।
जी हाँ, मैं भी अक्सर बेशतर जब प्रोग्राम में शरीक होता हूँ तो मेरी नज़र भी यही होती है
जी
कि इस वक्त के अंदर के जो के टाइम है प्रोग्राम का, उसमें
जी
हम
जी
सिर्फ चीदा चीदा नुकात ही
बेहतर
आइम्मा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के हवाले से
जी
अपने
जी
नाज़रीन की खिदमत में जो है वो पेश कर सकते हैं।
बस
हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फ़र्जंद हैं हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, और एक इब्तदाए कलाम के अंदर मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम आइम्मा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर रोशनी डालते हैं तो असल में लोगों के जहनों में, अफराद के जहनों में बहुत सारे मौजूआत जो है वो यकीनन आते होंगे।
बिल्कुल
शायद
बेशक
इस मौजू पर भी गुफ्तगू की जाए, शायद इस मौजू पर भी गुफ्तगू
जी
की जाए, लेकिन खुलासतन हम कोशिश करते हैं कि एक मजमूई तौर पर मौला की हयात तय्यबा के हवाले से
जी
अपने तमाम नाज़रीन को जो है वो थोड़ा सा मुतवज्जे करें। ख़ास तौर पर जब हम हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के, जिनके इरकाब में से एक लक़ब जो है वो जवाद भी है,
जी
और मामूलन आइम्मा अलैहिस्सलाम की ख़ास खसूसियात भी जो हैं वो होती हैं, उनमें से एक खसूसियत जो हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की समझी जाती है
जी जी
और वो है इनकी जुदो सखावत,
जी
और ये बख्शिश व मेहरबानी के जो हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के साथ और इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे नवे इमाम के तवस्सुल से इनके बड़ी बड़ी लोग मुरादें जो हैं वो
पूरी हो जाती है
पूरी जो हो जाती हैं, और बहुत से उलमा जो हैं वो हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हवाले से इनको बाबुल हवाइज भी जो है वो याद फरमाते हैं
जी
कि आप
जी
बाबुल हवाइज भी हैं। वैसे आज दो बाबुल हवाइज की विलादत का दिन है, एक
जी
हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और एक चश्माए
हज़रत अली असगर अलैहि
हज़रत
सलाम
अली असगर अलैहिस्सलाम
जी।
के, ये दोनों बाबुल हवाइज हैं, और यकीनन जो है वो आज का दिन इन दोनों शख्सियतों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम और अम्बिया अलैहिस्सलाम में एक बहुत ही तनासुब जो है, एक बहुत खूबसूरत तनासुब जो है वो हम देखते हैं, और इस खूबसूरत तनासुब के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि अम्बिया में से दो अम्बिया ऐसे हैं कि जिनको कम उम्री में वो नबूवत पर
फाइज हुए
फाइज हुए, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में दो मासूम ऐसे हैं कि जो कम उम्री में जो है वो इमामत के मनसब पर जो है वो फाइज हुए हैं।
और इनका आपका इमाम का जो है जो सिन था वो भी बहुत ही
बहुत ही
मुख्तसर
मुख्तसर था। जी हाँ,
जी
बिल्कुल ऐसा ही है। अम्बिया में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और
जी
हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम जो हैं
जी
वो दो नबी हैं कि जिन जो कम उम्री में जो है वो मनसबे नबूवत पर जो हैं वो फ़ायज़ हुए हैं, और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम अली नकी
नकी
अलैहिस्सलाम,
अलैहिस्सलाम
ये दो मासूमीन ऐसे हैं कि जो मसलन सिन बुलूग से पहले ही मनसब इमामत पर
इमामत
जो
पर फैज हो गए
फाइज हो गए थे, اور یہ امر جو تھا وہ بہتوں کے لیے قابل ہضم جو ہے وہ
نہیں تھا،
اور آپ کے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد جو مثلا اس زمانے کے عصر حاضر کے علماء و مشائق تھے وہ باور نہیں کر رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک 7 یا 8 سال کا بچہ جو ہے وہ منصب امامت پر جو ہے وہ فائز ہو جائے. بہرحال تشیع کا جو شیعہ عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ منصب امامت پر فائز ہونا یہ منصوب من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عمر کی بھی ظاہراً جو ہے وہ کوئی قید جو ہے وہ شرط نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو افراد ہیں وہ اپنی دنیاوی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، لہٰذا اس زمانے کے جو علماء تھے ان کو یہ چیز جو ہے وہ باور نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا وہ بار بار اس کوشش اور اس کھوج میں رہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے کوئی موقع ایسا ہاتھ آئے کہ جس سے اس منصب کے حوالے سے اس بچے سے ایسے سوال کیے جائیں کہ جو جواب دینے میں یہ تھوڑی سی پس و پیش سے کام لے. لیکن مورخین نے یہاں پر لکھا کہ سوال کرنے والوں کو موکی کھانی پڑی، اور امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کیا، اور جب وہ امام کے سامنے علمی مباحث کو بیان کرتے تھے، چھیڑتے تھے، تو امام اس طریقے سے ان مسائل کو حل فرماتے تھے کہ سامنے والا جو تھا وہ ششدر رہ جاتا تھا کہ میں اب کیا کروں. اور اس کے برعکس امام جن مسائل کو بیان کرتے تھے تو اس کے جواب دینے میں وہ العالم اور علماء و قاضی القضات جو تھے وہ ایک دم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بس کی بات جو ہے وہ نہیں ہے.
بہت اچھا نقطہ ہے آپ کا.
ایک سوال بھی آیا ہے، دیکھیں فون نمبر سے آیا ہے، پاکستان سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم نوجوان کیسے سیکھ سکتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام سے، جبکہ خدا کی طرف سے ان کو تو جو علم دیا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے ودیعت ہے، تو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، ہمیں تو خدا نے کوئی علم نہیں دیا.
یعنی اس سوال کا جواب ہم لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے اسلامی اسکالر نوید حیدر تقوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. آپ نے سوال سنا تو اس کا جواب
جی
کیا؟
بالکل، چونکہ بہرحال انبیاء اور معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، اور یہ سوال کہ ہم کس طرح ان کی مثلا حیات طیبہ پر، یہ درست ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو ہے منسوب ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیات اور ان کی مماد جو ہے وہ ہماری طرح ہی ہیں،
پیکر انسانی میں ہوا ہے،
پیکر انسانی کے اندر آئیں. ایک چیز یہ، ایک دوسری چیز یہ کہ خود قرآن کے جو مثلا کتاب الہی ہے وہ ہمیں تشویق کر رہی ہے اس امر کی طرف
جی،
کہ ہمیں معصومین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے تمہارے لیے. لہٰذا یہ خود اسوہ حسنہ معصومین علیہ السلام کا اور معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر عمل کرنا یہ ثقافت قرآنی ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے. اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو انہی معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو مد نظر رکھ کر اپنی حیات کے اندر جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ اس کو
اتار
سکتے ہیں. لہٰذا بہرحال یہ ایک سبجیکٹ بھی ہے، اگر میں اس کی ریزکاریوں میں جاؤں تو مجھے وقت جو ہے نا بہت زیادہ
جی صحیح کرے گا. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ائمہ کی عمر ہے، جو سن ہے ان کی، میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ایک فلسفہ ہے،
بے شک،
اور وہ یہی ہے کہ بھائی جوانی میں بھی اتنا کام کیا جا سکتا ہے، اتنی لوگوں کی ہدایت کی جا سکتی ہے، کم عمر میں بھی لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ جو ہے مطلب آپ مشعل راہ بن سکتے ہیں.
بے شک ایسا ہی ہے، اور معصوم کے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اس حوالے سے نمونہ عمل ہے. خاص طور پر ہم نے ششمائے شہزاد حضرت علی اصغر کا ذکر کیا ہے، وہ ذرحقیقت ششمائے تھے، نہ تلوار اٹھا سکتے تھے، ना जंग पे अपने पाँवों से जा सकते थे
ना बोल सकते
ना
थे।
बोल सकते थे, लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने, मक्तल लिखने वालों ने और कलम से जो है वो वाक़ए करबला को मक्तूब करने वालों ने जब इस सहने की तरफ, इस मंज़र की तरफ आते हैं तो उनके कलम भी जो है वो टूट जाते हैं। और दर हकीकत ये इस सिपाही ने करबला की जंग के रुख को ही जो है वो
बिल्कुल
तब्दील कर दिया।
बिल्कुल बिल्कुल
तो
कोई शक नहीं
लिहाजा जो
उसमें।
है इस घर के अफराद, मासूमीन अलैहिस्सलाम के खानवादों के अफराद, इस घर के परवरदा जो हैं वो इलाही मकतब के हामिल होते हैं। मखसूसन हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के जिनका तस्करा हम कर रहे हैं और आपका जूद व सका जो है वो मरूफ है, और इसी तरीके से इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का जो दौर इमामत और ख़ुद हयात तैयबा जो है, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दो मासूम हमारे ऐसे हैं कि जिनकी उम्रें 30 साल तक नहीं पहुंच पाईं।
जी
उनमें से एक हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है और एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है।
अच्छा
हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो है आपकी उम्र मुबारक जो है वो 25 साल जो है वो बताई जाती है। दौरान इमामत जो है आपका 18 साल का है। 7 से 8 साल की उम्र के अंदर आप जो हैं वो मनसबे
इमामत पे
इमामत
फायज
पर जो
हुए।
है वो फ़ाइज़ हुए हैं। दौरे इमामत जो है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का, इसके अंदर कुछ मकातिब जो है वो मसलन इस्लामी भी और गैर इस्लामी भी, उनके अंदर एक इन्हराफ जो है वो पैदा हुआ उस दौर के अंदर। चूँकि अब्बासी खुलफा जो थे वो
जी
अपने इख्तदार को मसलन महफूज रखने के लिए और अपने इख्तदार को बाहर न जाने के लिए उन्होंने जो है वो माशरे के अंदर, चाहे वो बनू उमैया का ख़ानदान हो चाहे वो बनू अब्बास का हो,
जी
वो ऐसे फितने खड़े करते थे कि जिससे इस्लाम की हकीकी माहियत जो है वो अपने सही रास्ते से जो है वो मुनहरिफ हो जाए। और उस वक्त से वो लोग इस्तफादा कर हासिल करते हुए अपने मजमूम मकासद को जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएँ। लिहाजा आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जब 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 हम जद्दोजहद को देखते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मासूमीन अलैहिस्सलाम बने। उस मसलन अफकार के ख़िलाफ़ के जो कुरानी अफकार के मुखालिफ थे, उन
बेशक
नज़रियात के ख़िलाफ़ के जो इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ थे, लिहाजा आपने हर मकाम पर आकर जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्लाम की तशरीह की और शागिर्दों की तरबियत फरमाई। हम अव्वल इमाम से लेकर और आखिर इमाम तक देखें तो ये सिलसिला तरबियत शागिरदान का जो है वो जारी है। और हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो हैं आपके भी दो मुमताज़ शागिर्दों का जिक्र जो है वो आपकी सीरत में मिलता है। एक हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के,
जी
जिनका मरकद मुतहर,
यही
हरम
तेहरान
मुतहर जो
में ही
है वो
है
तेहरान शहर रे में है,
जी।
और एक अबू बसीर हैं कि जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मसलन दामन में रहते हुए इन्होंने जो है वो मसलन इल्म को जो है वो हासिल किया। और ख़ास तौर पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के नाम के साथ जो जवाद और आपकी बख्शिश और आपकी सखावत का जो है वो जिक्र किया जाता है, उसकी वजह यह है कि आपने कभी भी नादारों, बेकसों और उन माशरे के जो ज़ईफ़ तबका है उसको कभी फरामोश नहीं किया,
दबे कुचले लोगों को
दबे कुचले लोगों को, और हत्ता कि आपने किसी भी साहिल को जो है वो
कभी वापस नहीं किया।
वापस नहीं किया, और हमेशा हत्ता के लोगों की वो दिली मुरादें जो लोगों के दिलों में रहती थी
जाहिर नहीं करते थे।
जाहिर नहीं करते थे, इमाम ने अपनी बख्शिश को उनके लिए भी जो है वो पेश किया।
वाह
और इसके लिए जो है वो इमाम के एक चाहने वाले, अगर वक्त है तो मैं जो है वो इस
वाक़े को
वाक़ बहुत मुख्तसर सा
वाक़े
है।
आप जो है मैं आपसे जो है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में
जी
सुनूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल
हम लोग आमतौर से जो ये तारीखें आती हैं इनमें हम लोग तवज्जो इस मामले पर नहीं देते कि हम लोगों को इल्म कितना कम है, हम लोगों का इल्म कितना कम है और हम लोगों को कितनी तवज्जो देनी चाहिए इन दिनों पर और क्या कुछ हमें हासिल नहीं करना चाहिए। अगर देखें शुरू से लेकर आखिर तक हर एक शख्स जो अक्लमंद होता है, अइम्माओं और अम्बिया का तो मकाम अलग है, हम लोग उनकी बातों पे तवज्जो ही नहीं देते कि इल्म हासिल कैसे किया जाता है। हम लोग समझते हैं कि भाई स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, बस यही काफ़ी है हम लोगों के लिए। अलग से मुतालिया हम लोगों का सिफर के करीब रहता है। और यकीनन अगर खुसूसन आज की दुनिया में हमें तरक्की करनी है, मैं मुसलमानों की बिलखुसूस बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल करके और इसके अलावा अपना मुतालिया मुख्तलिफ़ मैदानों में बढ़ा के ये काम किया जा सकता है। मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम से सबसे बड़ा दर्स, अमली दर्स जो आजकल हम लोगों को बहुत आसान सा दर्स जो हम लोगों को मिल सकता है, एक वो उनमें से एक यही है। वापस चलते हैं हम अपने अजीज भाई की तरफ। जी
शुक्रिया हसन, बहुत सही बात कही आपने। इंशाल्लाह इसके इस सिलसिले में आपसे तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। बहरहाल वक्त बगैर बिना ज़ाय किए हम चलते हैं अपने तकवी साहब के खिदमत में। तकवी साहब, आप एक वाकया बयान करने वाले थे, माफ़ कीजिएगा कि हमको वक्फा लेना पड़ा।
कोई मसला नहीं, अब बयान कर सकते हैं। का हिस्सा होता है। मैं यहाँ पर हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के हवाले से कि आप कितने ज़्यादा जो है वो बख्शिश और मेहरबानी अपनी ज़िंदगी में आपने अंजाम दी और वो बख्शिश और मेहरबानी आपके नाम के साथ जो है वो जुड़ गई, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक आपके मसलन आशिकों में से थे, आपके मसलन चाहने वालों में से थे इब्न सहल। कहते हैं कि वो इमाम की खिदमत में हाज़िर हुए और वो ये चाह रहे थे कि इमाम से मुलाकात के बाद जो है वो एक लिबास जो है वो उसकी ख्वाहिश इमाम से ज़ाहिर करूं और इमाम वो मुझे लिबास जो है वो अता करें। तो कहते हैं कि मैं इतना गुफ्तगू के अंदर मगन हो गया कि जब खुदाफ़ज़ी का वक्त आया मैं भूल गया कि इमाम की खिदमत में ये बात जो है वो पेश करूं। कहा कि जब मैं वापस पलटा अपने शहर की तरफ जा रहा था तो जो उस वक्त मुझे याद आया कि मुझे इमाम से तो एक लिबास लेना था ताकि वो मेरे लिए तो शायद आखरत भी करार, मेरे लिए जो है ना वो बरकत का तबर्रुक जो है वो करार पाए। तो कहा ऐसा करता हूँ कि मैं एक खत जो है मौला को लिख देता हूँ और उसमें अपनी इस ख्वाहिश को जो है वो तहरीर कर दूँ। तो कहते हैं कि मैंने ख़त लिखा, ख़त लिखने के बाद उस ख़त को बंद किया और चाहता था कि कोई जाने वाला हो तो इमाम की खिदमत में उस ख़त को रवाना करूँ। लेकिन जब वो ख़त मैं लिख चुका तो रास्ते में मैं था तो मुझे ख्याल आया कि ये अब मैं ख़त इमाम को लिखूँगा, इमाम पता नहीं क्या समझेंगे। तो कहते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ नागवार सी मुझे गुजरी, मैंने वो ख़त फाड़ कर जो है वो पानी में बहा दिया। तो कहते हैं कि अभी मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था तो इमाम का एक कासिद जो है वो एक पुख्ता लेकर जो है मेरे पास आया और कहा कि ए इब्न साहिल, तुम इमाम के पास गए और तुमने फरामोश किया, ख़त लिखा उसमें भी तुमने जो है थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास किया, लेकिन तुम्हारे मौला व आका जो हैं उनको इन तमाम बातों का इल्म था। एक लिबास नया जो है वो तुम्हारे तोहफे के तौर पर उन्हें भेजा है और इसको अपने पास रखो। कहने का मेरे मकसद ये है कि आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम जो हैं वो लोगों के दिलों के राज जानते थे और वो मसलन मिस्कीनों और मोहताजों की ज़रूरत को भी जो है वो महसूस किया करते थे। हमारा फ़र्ज़ क्या है? हमारा फ़र्ज़ भी ये है कि कोशिश न करें कि कोई हमसे जो है वो कोई सवाल लेकर आए तब जाकर हम उसकी ज़रूरत को जो है वो पूरा करें। माशरे में, अपने ख़ानदान में, अपने अफराद में, नज़दीक तरीन लोगों में ऐसे दसियों लोग मौजूद होते हैं कि जो नादारी और किसी भी सबब से जो है वो कोई परेशान हाल होते हैं। इंतज़ार न करें कि वो आपकी खिदमत में किसी मुश्किल को लेके आए कबल उसके के
अगर आप समझ रहे हो,
अगर आप बिल्कुल ऐसा ही है उसकी परेशानी को जो है वो दूर कर दें तो खुदा के हाँ आपका मर्तबा और मकाम जो है वो बहुत बुलंद होगा। यकीनन आज का दिन और आज की शब मखसूसन ये कुल्लन अय्याम जो हैं के अय्याम हैं और मुझसे मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं वो जिक्र करते हैं कि बहुत सोने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से औलाद को चाहा, मौला ने इनको औलाद अता की। ख़ास तौर पर जो साहिब मसलन जिनके घर नहीं हैं, जो चाहते हैं कि मसलन मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी एक छत हो, तो कहते हैं कि वो मसलन इमाम जवाद से तवसल करें, मौला जो है उनके तवसलात को कबूल करता है। इसी तरीके से शहज़ाद अली असगर जो हैं वो भी बाबुल हवाइज हैं और हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा गुलपायगानी के मसलन तवसल से ये बात हम तक पहुँची है कि वो किसी मुश्किल में होते थे तो वो मेंबर पर जो जाकिर जाता था तो उससे ये कहते थे कि आज अपने मसाइब के अंदर शहज़ादा अली असगर का जो है वो जिक्र करना, क्योंकि मुझे एक मुश्किल दरपेश है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुश्किल जो है वो हल हो जाए। परवरदिगार मुताल हम सबको آئیں میں معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام سے خاص طور پر جیسے کہ ہمارے بھائی حسن نے ذکر کیا کہ یہ ایام در حقیقت جو ہوتے ہیں وہ خود سازی کے ایام ہیں، اور اس کے اندر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور توسل کرنا چاہیے ان شخصیات کے ساتھ کہ جو ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھی ہیں اور شفاعت کے لیے آخرت میں.
بالکل، بہت بہت شکریہ.